लीला के अचानक चौहान पैलेस पहुंच जाने पर वहां का माहौल काफी गंभीर हो गया था। वंश को अचानक नव्यांशी और अरमान के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। वो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और लीला के इरादे भी शिवांशा के प्रति उनसे छुपे हुए नहीं थे। ऐसे में शिवांशा की सेफ्टी के लिए वो नहीं चाहता था कि राजावत फैमिली से किसी तरह के रिश्ते जोड़े जाएं। वंश ना सिर्फ शिवांशा की ज़रूरत से ज़्यादा चिंता कर रहा था, बल्कि उसे शिवांशा की बातों के बाद यही लग रहा था कि वेद उसकी ठीक से केयर नहीं करता है। हालांकि वेद ने अपनी तरफ से उसे समझाने की कोशिश की, पर वंश सुनने को तैयार नहीं था। आराध्या वंश को जैसे तैसे करके वहां से लेकर गई और उनके वहां से निकलते ही वेद ने शिवांशा को एक टफ लुक दिया। वो उससे बात किए बिना कमरे में चला गया था। शिवांशा को यही लगा कि वंश के बर्ताव के पीछे वेद उसे जिम्मेदार न ठहरा दे। उसका चेहरा देखकर साफ जाहिर था कि वो उससे नाराज है। अब गलती की है तो सुनने के लिए भी तैयार रहना होगा। क्या जरूरत थी वंश भैया के सामने इतना सब कुछ बोलने की? मेरे ज्यादा बोलने की वजह से वंश भैया को यही लग रहा है कि ये मेरी परवाह नहीं करते, जबकि उन्हें कैसे समझाऊं कि अगर इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा किसी की फिक्र है तो वो सिर्फ वेद हैं। ऐसा करूंगी, रूम में जाते ही सॉरी बोल दूंगी। वैसे ज्यादा देर नाराज नहीं रहते हैं वो, लेकिन आज पूरे दिन से उनका मुंह बना हुआ है। शिवांशा खुद से बातें करते हुए ऊपर जा रही थी। उसे यही लग रहा था कि आज उसकी अच्छी खासी क्लास लगने वाली है। शिवांशा कुछ ही मिनट में अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने देखा वेद चेंज कर चुका था। वो अपनी शर्ट की स्लीव्स के बटन्स फोल्ड कर रहा था। उसके हाथों की उभरी हुई नसें देखकर शिवांशा कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई और उसी की तरफ खोई हुई निगाहों से देखने लगी। वेद की नज़र उसकी तरफ गई तो उसने आंखें घुमाई और कहा, इस तरह देखना बंद करोगी? मुझे अजीब लग रहा है। वेद की आवाज सुनकर शिवांशा का ध्यान टूटा। उसकी नजरें तुरंत झुक गई थीं। कुछ पल की खामोशी के बाद शिवांशा ने भौहें से कोड़कर वेद की तरफ देखा। उसका चेहरा काफी कुछ कह रहा था, पर मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो मैं सॉरी, शिवांशा हकलाते हुए बोलने की कोशिश कर रही थी। तभी वेद ने अपने हाथ हल्के से फैलाए और शिवांशा को अपने पास आने का इशारा किया। एक पल के लिए वो चौंक गई थी और फिर जल्दी से आगे बढ़कर शिवांशा वेद के सीने से लग गई थी। उसकी आंखें बंद थीं और वेद धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था। तुम डर गई थी ना, वेद बोला। शिवांशा भले ही कमरे में इस डर से आने से डर रही थी कि वेद उसे डांट लगाएगा, लेकिन वो उसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। वो पल अभी भी उसकी आंखों में घूम रहा था जब वेद अचानक शिवांशा और लीला के बीच में आकर खड़ा हो गया था। जब शिवांशा ने वेद का हाथ पकड़ा था तब वो कांप रही थी। ये वेद और बाकी फैमिली से छुपा हुआ नहीं था कि वो किस हद तक लीला से डरती है। शिवांशा ने वेद की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बिल्कुल शांत थी। वेद ने आगे कहा, वो बार बार अब तुम्हारे सामने आएगी और तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। ठीक है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा, पर हो सकता है कि कभी मुझे आने में देर हो जाए, तो मैं नहीं चाहता कि तुम डरकर अपने कदम पीछे लो। मुझे यकीन है आपको कभी देर नहीं होगी, शिवांशा ने हल्का मुस्कुराकर कहा और फिर सिर उठाकर वेद के चेहरे की तरफ देखा। और कभी हो गई तो? वेद ने भौहें चढ़ाकर पूछा। तो मैं आपके आने का इंतजार करूंगी, मुझे आप पर भरोसा है। देर से ही सही, पर आप आओगे जरूर। आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, शिवांशा ने पूरे विश्वास के साथ कहा। वेद ने उसकी बात पर हल्के से सिर हिलाया और उसके फोरहेड पर किस कर लिया। वो शिवांशा से अलग हुआ और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसे समझाते हुए प्यार से बोला, मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर डिपेंडेंट हो जाओ। यूनिवर्सिटी जाना है तो खुद को स्ट्रांग करना होगा। मैंने देखा कि किस तरह वहां के स्टूडेंट्स तुम्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। हाँ, शायद साड़ी की वजह से, शिवांशा ने जवाब में कहा। जी नहीं मैडम, आपके अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से वो आपको इस तरह से देख रहे थे। अगर तुम साड़ी में कंफर्टेबल नहीं हो तो कुछ भी पहन कर जा सकती हो, लेकिन इतना डरकर और घबराकर रहोगी तो सब उसी तरह देखेंगे, वेद ने हल्के तरीके से कहा। शिवांशा ने उसकी बात पर हामी भरी। कुछ पल की खामोशी के बाद शिवांशा ने वेद की तरफ देखकर हिचकिचाते हुए पूछा, तो क्या आप मुझसे नाराज नहीं है? और वो किस लिए? वेद ने तुरंत पूछा। वंश भैया मेरी वजह से आपको गलत समझ रहे हैं। आपको मुझ पर गुस्सा आया होगा ना, क्योंकि आखिरी बार मैंने ही बातों बातों में कह दिया था कि आप मेरी सुनते नहीं हैं, शिवांशा ने बताया। वेद हल्का सा हंस पड़ा था। वो बोला, तुम जिस तरह से डरने वाली हो, इतना गुस्सा मैं तुम पर कभी नहीं करने वाला। रही बात वंश की, तो वो ओवर इमोशनल है। दिखने में कितना भी सख्त क्यों ना दिखाई दे, लेकिन मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। अगर उसे किसी से नफरत हो गई तो उसकी थिंकिंग को बदलना मुश्किल होता है, और अगर किसी के लिए सिंपथी है तो फिर वो उसके लिए लड़ जाता है। अच्छा है ना, उसकी थिंकिंग चेंज हो गई और अब वो मेरी वजह से तुम्हें भला बुरा सुनाने के बजाय तुम्हारे लिए मुझसे लड़ रहा है। ये ऑप्शन मुझे ज्यादा सही लग रहा है। हाँ, मुझे भी।
वो जब मेरा फेवर करते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं। तो क्या मैं उन्हें और बोलूं कि आप सच में मेरे साथ कितना अत्याचार करते हो ताकि वो मेरा और साथ दें? शिवांशा ने शरारती अंदाज में कहा। सोचना भी मत, वो मेरा जीना हराम कर देगा, वेद ने झट से कहा। जहां एक तरफ वेद और शिवांशा के कमरे से उन दोनों के हंसने और प्यार भरी नोकझोंक की आवाज आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वंश और आराध्या के कमरे का माहौल अभी भी उतना ही गंभीर था। वंश गुस्से में इधर उधर चहलकदमी कर रहा था, जबकि आराध्या बेड पर पैर पर पैर रखकर बैठी हुई थी और उसकी तरफ सीरियस अंदाज से देख रही थी। अगर तुम्हारा चक्कर लगाना बंद हो गया हो तो बैठकर बात करें, आराध्या ने हल्की झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। वंश जल्दी से रुका और उसके सामने जाकर अविश्वास भरे भाव के साथ कहा, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो उस फैमिली में एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और उसने खुद देखा है कि लीला राजावत किस तरह भाभी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती रहती है। क्या उसे एक बार भी भाभी का ख्याल नहीं आया? अरमान एक अच्छा लड़का है और वो अपनी फैमिली से अलग रहता है। नव्यांशी को कभी उनके साथ नहीं रहना पड़ेगा, और तुम मुझसे सवाल जवाब करने के बजाय खुद नव्यांशी से बात क्यों नहीं कर लेते? आराध्या ने सुझाव दिया। नव्यांशी बिल्कुल वेद की तरह सख्त थी। आराध्या जानती थी कि वंश को सिर्फ वही समझा सकती है। सही कहा, मैं क्यों तुम लोगों से बहस कर रहा हूँ? मुझे डायरेक्ट नव्यांशी को कॉल करना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि वो यहाँ वापस आ जाए, और कोई जरूरत नहीं है अरमान राजावत से शादी करने की, वंश ने सिर हिलाकर कहा और जल्दी से अपना मोबाइल निकाला। वहीं उसका इतना कॉन्फिडेंस देखकर आराध्या ने अपना सिर पकड़ लिया था। वंश ने तुरंत नव्यांशी को कॉल किया। उससे बात करने के लिए नव्यांशी अपने कमरे में आ गई थी। जैसे ही नव्यांशी ने कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से वंश एक ही सांस में बोल पड़ा, नवी मैं तुम्हारे लिए टिकट बुक कर रहा हूँ और फ्लाइट का टाइम मैसेज कर दूंगा, उस हिसाब से अपनी पैकिंग तैयार रखना। तुम अभी उदयपुर आ रही हो, कुछ हुआ है क्या? नव्यांशी ने बेपरवाह अंदाज में कहा।
कुछ हुआ है? बहुत कुछ हुआ है, और तुम लोग कभी मुझे कुछ नहीं बताते हो। तुम अरमान राजावत के घर पर रह रही हो, ऊपर से तुम्हें वही यूजलेस लड़का खुद के लिए सिलेक्ट करना था। वो ठीक से कोई काम भी नहीं करता है। तुम्हारी वजह से आज उस लीला राजावत को हमारे घर में आने का मौका मिल गया, और वो शगुन लेकर आई थी। उसका बस चलता तो वो उसी वक्त तुम दोनों की शादी करवा देती। मुझे कोई और बहस नहीं चाहिए, जल्दी से अपना सामान पैक करो, वंश ने सीधे सीधे ऑर्डर्स देते हुए कहा। क्या वेद भाई घर पर थे? नव्यांशी ने आंखें छोटी करके पूछा। वो कहाँ हो सकते हैं? अफकोर्स घर पर ही थे। कई बार भाई को जहाँ हमारे लिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वहाँ वो बहुत लापरवाह हो जाते हैं। शादी ब्याह एक दिन का काम नहीं होता है, और वो इमोशनल होकर फैसला ले सकते हैं। लेकिन तुम्हारा क्या, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? तुम्हें वो लड़का पसंद भी कैसे आ सकता है? और अजीब बात है कि सबको जानते हुए भी भाई को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वंश ने झुंझलाकर कहा। वंश की बातों से ये साफ हो गया था कि वेद नव्यांशी और अरमान के रिश्ते के खिलाफ नहीं था। नव्यांशी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। उसने सख्त आवाज में कहा, जब उन्हें प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? और आगे से अरमान को यूजलेस मत कहिएगा, वो मेरा होने वाला पति है और मैं उसके खिलाफ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सुन सकती हूँ। क्या सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नव्यांशी? तुम उसे अपना पति कह रही हो? तुम सब पागल हो गए हो, वंश ने चिढ़कर तेज आवाज में कहा। पागल हम नहीं, आप हो गए हैं जो हर बात पर ओवर रिएक्ट करते रहते हैं। शुरू में मुझे भी आराध्या भाभी पसंद नहीं थी, और ना ही शिवांशा भाभी। बदला निकाल रहे हो आप मुझसे? आपने और वेद भाई ने मेरी सुनी क्या जो मैं आपकी सुनने वाली हूँ? चुपचाप कॉल कट कीजिए और विलन बनने की कोशिश मत कीजिए। शादी तो मैं अरमान से ही करूंगी, नव्यांशी ने पूरे बेबाक अंदाज में जवाब दिया और वंश के जवाब का इंतजार किए बिना कॉल कट कर दिया। उसकी इस हरकत पर वंश आंखें फाड़ कर मोबाइल स्क्रीन को देख रहा था। उसका कॉल स्पीकर पर था और आराध्या ने भी सारी बात सुनी थी। कुछ पल के लिए वंश अपनी जगह पर जाम सा जा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बदतमीजी से बात करने के बाद नव्यांशी ने उसके मुंह पर कॉल काट दिया था। इस लड़की को भाई के लाड़ प्यार ने बिगाड़ा है, उसने मेरा कॉल कट किया और मुझे धमकी दे रही है, वंश दांत पीसते हुए बोला। वैसे उसने कुछ गलत नहीं कहा है, तुम क्यों बेवजह विलन बन रहे हो? अरमान राजावत सच में अपनी फैमिली से अलग है, और भाई इतने कॉन्फिडेंट है तो तुम्हें भी बेफिक्र हो जाना चाहिए। वे हम सबके मामले में जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते हैं। जरूर उन्होंने अरमान के बारे में पहले ही पता लगा लिया होगा, तभी लीला आंटी से शगुन का सामान उन्होंने खुद स्वीकार किया था, आराध्या ने उसे समझाया। अजीब बात है, तुम उस औरत को आंटी कह रही हो? अभी से तुम सबने रिश्ते जोड़ने शुरू कर दिए, वंश ने तंज भरे लहजे में सिर हिलाकर कहा। हाँ, रिश्तेदारी जुड़ रही है तो थोड़ी इज्जत देने की आदत तो डालनी ही होगी ना। खैर छोड़ो, कल सुबह भाई से सीरियस होकर इस मामले में बात करते हैं, और मुझे लगता है कि उन दोनों की सगाई कर देनी चाहिए, आराध्या ने गंभीर आवाज में कहा। वंश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो अभी भी इस रिश्ते को लेकर श्योर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वंश के कॉल ने नव्यांशी को थोड़ा परेशान कर दिया था। ऐसा नहीं था कि वो वंश के इस रिश्ते के लिए तैयार ना होने की वजह से परेशान थी, उसकी परेशानी और फिक्र का कारण वेद था। तो क्या उस दिन अरमान ने कॉल पर भाई को हम दोनों के बारे में बता दिया था? उन्होंने मुझे क्यों नहीं कहा? और सच में मिसेज राजावत घर पर शगुन लेकर पहुंच गई थी क्या? सब कुछ कितना एम्बैरेसिंग रहा होगा, हम दोनों को पता तक नहीं और वे लोग इतनी प्लानिंग कर रहे हैं, नव्यांशी ने आंखें बंद करके कहा।
ऐसा नहीं था कि वेद वंश अरमान या नव्यांशी अपनी जिंदगी में आने वाले नए बदलाव के लिए तैयार नहीं थे, ये कभी ना कभी होना ही था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दबाजी में होगा इसका उन्होंने भी अंदाजा नहीं लगाया था। वेद ने लीला के हाथ से शगुन स्वीकार कर लिया था, पर वो ज्यादा दिन तक नव्यांशी और अरमान की सगाई की बात को लटका कर नहीं रख सकता था। नव्यांशी ये अच्छे से जानती थी और साथ ही ये भी कि अरमान ने उसे बचाने के लिए उनके रिश्ते को कबूल कर लिया था, पर वो भी इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ने वाला था। इससे पहले कि ये सारे लोग मिलकर मेरे और अरमान के रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, मुझे अरमान को पहले ही समझाना होगा, वरना उनकी जल्दबाजी के चक्कर में कहीं अरमान फिर से अपने कदम पीछे ना ले ले, नव्यांशी परेशान स्वर में बोली और जल्दी से उठकर अरमान से बात करने के लिए जाने लगी। वहीं लीला भी राजावत हवेली पहुंच चुकी थी और इस वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी सी विजयी मुस्कुराहट थी। बहुत बड़ी गलती की है तुमने वेद, ये शगुन स्वीकार करके, और जल्द ही तुम्हें अपनी इस गलती का एहसास भी हो जाएगा, लीला ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। इस वक्त उसके कदम अपने कमरे की तरफ पड़ रहे थे, वो अपनी पहली जीत की बधाई देने के लिए तेजेंद्र के पास जा रही थी। ओके, यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है जहाँ साजिशों का दौर शुरू होगा। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अच्छा रिस्पांस दिया करो यार, आप लोग कंप्लेंट तो कर देते हो कि मैं रोज नहीं लिखती, पर साथ ही आप भी एक्टिव नहीं रहते। आप अच्छे से सब रिव्यू करते रहोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा।